नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानूनों को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु तथा मध्यम उद्यम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान विकास नवाचार को इंडिया एआई मिशन और दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले देश के नवाचार तंत्र को और मजबूत करेंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादु गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।